नमस्कार भारत, तारीख 8 मई दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री मिले प्रधानमंत्री से, अखिलेश यादव ने यूपी के लिए मांगे 11,000 करोड़, पर राज्यों को धन कैसे मिलता है?
नियम यह है कि एक तरफ मंत्रालय टीम जाती है, रिपोर्ट लाती है, वो रिपोर्ट और आकलन गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, उसमें जाता है और वहीं से उसकी मंजूरी होती है कि कितनी राशि जाएगी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विभाग की ओर से जारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री नीतीश की तस्वीर गायब होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल।
सरकार के प्राथमिकता में विज्ञापन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनको ये बात पच नहीं रही है, इसलिए ये सवाल छोटे मोटे सवाल उठाते रहते हैं।
शराबबंदी के चलते पड़ोसी नेपाल में जाकर लोग पी रहे हैं बिहार की शराब। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सूखे से जूझ रहे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग से जल संरक्षण और प्रबंधन को मापने के लिए एक सूचकांक विकसित करने के लिए भी कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टैंकरों से पानी पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार से 11,000 करोड़ रुपये की मदद मांगी है। स्पेन की सरकार के मुताबिक सीरिया में अगवा किए गए 3 स्पेनिश पत्रकारों को रिहा कर दिया गया है। एंटोनियो पैम्पलीजा, ऑज मैनुअल लोपेज और एंजल सास्त्रे 10 महीने पहले उत्तरी शहर एलेपो से गायब हो गए थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि स्पेन के इन 3 पत्रकारों को किसने अगवा किया था। स्पेन की सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 पत्रकार फिलहाल तुर्की में हैं, स्वस्थ हैं और स्पेन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कनाडा के अधिकारियों के मुताबिक अल्बर्टा प्रांत में लगी भीषण जंगल की आग और तेजी से फैल रही है और पड़ोसी प्रांत सास्काचेवान तक पहुंच सकती है। हजारों अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन गर्म, शुष्क और तूफानी हवाएं आग बुझाने के प्रयासों में बाधा बनी हुई हैं। तेल उत्पादक शहर फोर्ट मैकमरे से अब तक 80,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। अभी भी शहर के उत्तरी इलाके में हजारों लोग फंसे हुए हैं। राहत कर्मियों को उम्मीद है कि आज शाम तक इन्हें भी निकाल लिया जाएगा। अल्बर्टा प्रांत की प्रीमियर रेशेल नेटले ने बताया,
No one who is not a trained first responder with a specific job to do,
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मदद देने के लिए प्रशिक्षित नहीं है या जिसे कोई विशेष काम नहीं दिया गया है, उसे फोर्ट मैकमरे में नहीं होना चाहिए। शहर के हर हिस्से में अनिवार्य निकासी आदेश लागू हैं और ये आदेश आने वाले दिनों में भी लागू रहेंगे। बोस्निया की प्रसिद्ध फरहात पाशा मस्जिद को पुनर्निर्माण के बाद दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। 1992 से 95 तक चले युद्ध में सर्बों ने इस ऐतिहासिक मस्जिद को नष्ट कर दिया था। इसे बोस्निया की सदियों पुरानी धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला माना गया था। पोलैंड में 7 माह पहले सत्ता संभालने वाली लॉ एंड जस्टिस पार्टी की नीतियों के खिलाफ लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी वारसा के अधिकारियों का कहना है कि पोलैंड में 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद से यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारी कट्टरपंथी पार्टी के शासन में सत्ता के केंद्रीकरण और देश के शीर्ष अदालत की शक्तियाँ सीमित करने के लिए उठाए गए कदमों का विरोध कर रहे हैं। ग्रीस की संसद में विवादित पेंशन सुधारों पर सांसदों का मतदान हो रहा है। संसद के बाहर उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ग्रीस को अंतर्राष्ट्रीय मदद की अगली किस्त मिलने की शर्तों में कठोर पेंशन कटौती भी शामिल है और पसंदीदा घोड़े नाइक्विस्ट ने अमेरिका में केंटकी डर्बी रेस जीत ली है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कहा जाता है, बिन पानी सब सून, बिना पानी के जीवन संभव नहीं। रसायन विज्ञान की भाषा में समझें तो H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और बिना पानी के जीवन संभव नहीं। वैज्ञानिक इसी पानी और जीवन की खोज आकाशगंगा के दूसरे ग्रहों में करते हैं। यही पानी अगर बंजर धरती पर पड़े तो बीज पनप जाए और ना पड़े तो सूखा, अकाल, भुखमरी। भारत के कई राज्य इस समय सूखे की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने सूखे की स्थिति को लेकर मुलाकात की। केंद्र की ओर से बुंदेलखंड भेजी गई वाटर ट्रेन वापस करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद 11,000 करोड़ रुपए मांगे और कहा कि सूखे से निपटने के लिए केंद्र व राज्य को मिलकर काम करना होगा। मुलाकात में प्रधानमंत्री ने पानी बचाने के लिए पारंपरिक और आधुनिक तरीकों को आजमाने पर बल दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने भी सरकार से मदद की मांग की। तो सूखे को लेकर बैठकों का दौर जारी है, साथ ही सियासत भी। सुनिए वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
सूखे के संकट से जूझते बुंदेलखंड को भेजी गई वाटर ट्रेन वापस लौटाने के बाद शुरू हुई राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कल हुई इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से 10,000 पानी के टैंकर खरीदने के लिए धन मुहैया कराने को कहा। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सूखे से निपटने के लिए आजमाए जा रहे उपायों पर उनकी विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मानसून के पहले के समय को जल संरक्षण के प्रयासों के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बल दिया। इस मुलाकात के बाद अखिलेश मीडिया से मुखातिब हुए तो सवाल वाटर ट्रेन का भी हुआ। इस पर अखिलेश ने कहा,
जो डैम्स हमारे हैं पानी है, हमें इंतजाम ये करना है कि पानी कैसे हम गांव तक पहुंचाएं, उसी लिए टैंकर चाहते हैं। अगर आप ट्रेन है, ट्रेन के किसी गांव में चले जाओगे, ट्रेन के किसी मजरे में चली जाएगी, अंततः आपको टैंकर ही चाहिए होगा। सूखे पे दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र और राज्य सरकारों के साथ चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत बंद नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी सूखे को लेकर अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
अगर अखिलेश सरकार संवेदनशील होती तो जो सूखा राहत के लिए 850 करोड़ पैसा है बुंदेलखंड के पास, उसका पूरा उपयोग होता। अखिलेश जी के अधिकारियों के मुताबिक उसमें 5% वो सिर्फ खर्च कर पाए हैं।
सूखे के संकट से घिरे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की और केंद्र सरकार की ओर से मदद मुहैया कराने को कहा। हालांकि मुलाकातों के इस दौर के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जमीन पर काम कितना होता है और राजनीति कितनी होती है।
तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्य में सूखे की स्थिति पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने राधा मोहन सिंह से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि सूखे से ग्रस्त किसी राज्य को कितनी राशि मुहैया करानी है, इस बात का फैसला केंद्र सरकार कैसे करती है।
नियम यह है कि एक तरफ मंत्रालय टीम जाती है, रिपोर्ट लाती है और फिर वो रिपोर्ट और आकलन गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, उसमें जाता है और वहीं से उसकी मंजूरी होती है कि कितनी राशि जाएगी।
पूरे देश में जिस तरह से सूखे की स्थिति है और लगातार ये मुद्दा उठता भी रहा है, और एक सवाल ये किया जाता है कि सरकारों ने जो सक्रियता आप दिखाई है उसमें थोड़ी देर हुई, अगर पहले ये सक्रियता होती तो स्थितियाँ कुछ अलग होती।
जो स्थिति आई है ये वर्षों से जल प्रबंधन ठीक नहीं था, इसके कारण कि आज ये परिस्थिति आई है। अब नई सरकार ने जल प्रबंधन की योजनाएं बनाई है, भविष्य में ऐसी संभावना नहीं रहेगी। तत्काल रहा तुरंत राहत का तो राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ राज्यों के माध्यम से इस दिशा में काम कर रही है।
जिस तरह से केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकारें मांग कर रही हैं और केंद्र सरकार का कहना है कि ये विषय सूखे का जो है वो राज्य सरकारों का है।
सूखे का ही नहीं, कृषि का, रेल, टेलीकम्युनिकेशन, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको छोड़कर बाकी सारे काम राज्यों के माध्यम से होते हैं। सिर्फ सूखा ही नहीं, बाढ़, वर्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए राज्य सरकार जो भी योजना बनाती है, राशि देती है, राज्य सरकार के माध्यम से ही होती है क्रियान्वयन।
जी, लेकिन इसमें जिस तरह के बयान आते हैं उसको देखा जाता है कि समस्या से ज्यादा वो राजनीति की बात होती है।
कोई कोई राज्य ऐसा है जो क्रियान्वयन बहुत अच्छे ढंग से करता है, लेकिन आज जो समस्या खड़ा हुआ है जल संकट का, ये पुराना समय से जल प्रबंधन पर हमने विशेष नहीं ध्यान दिया, उसका ये परिणाम है। दो प्रकार की योजना, एक तो तत्काल राहत, और इस दिशा में भारत सरकार पूरी सक्रियता से काम कर रही है और राज्य भी सहयोग कर रही है। दीर्घकालीन कई योजनाएं नई सरकार ने चलाई है और निश्चित रूप से राज्यों ने जो उन योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन किया तो भविष्य में संकट नहीं आएगा।
राधा मोहन सिंह सूखे का जिम्मेदार जल प्रबंधन का न होना मानते हैं और योजनाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि भविष्य में इस तरह का सूखा नहीं पड़ेगा। इस बीच मैग्सेसे और स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित भारत के वाटरमैन यानी कि जल पुरुष राजेंद्र सिंह जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम बनाने के लिए जल सत्याग्रह कर रहे हैं। दिल्ली में सत्याग्रह के बाद राजेंद्र सिंह फिलहाल महाराष्ट्र में हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने ही राजेंद्र सिंह से बात की सरकार के कामकाज पर।
सरकारों का काम एडवर्टीजमेंट देना नहीं होता है, सरकारों का काम होता है धरती पे काम करके दिखाना। जब अच्छा काम होगा तो लोग उससे सीख के करेंगे, लेकिन सरकारों का काम होता है कि वो धरती पर काम करके दिखाए। जैसे ये मेमोरेंडम हमने दिया था, उस मेमोरेंडम में अच्छी बात तो ये लगी कि भाई चलो उन्होंने कम से कम अखबारों में तो स्वीकार कर लिया जो हम कह रहे हैं वो करने के लायक काम है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती कि वो काम धरती पे होने लगता जल सत्याग्रह के बाद।
अधिनियम बनाने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों की महती भूमिका है, लेकिन ये सूखे को लेकर जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में कई बार तालमेल देखने में नहीं मिलता है बल्कि सियासत होती हुई नजर आती है, इसे आप कैसे देखते हैं?
जब सरकारें पानी जैसी चीज में भी दलगत राजनीति ले आती हैं, तब पानी के काम में शाश्वत दिखती है। जल जैसे काम में दलगत राजनीति में आना ठीक नहीं है। जल का काम तो सबको मिलके करने की जरूरत है, क्योंकि जल का काम ना अकेली भारत सरकार का है, ना राज्यों की सरकार का है और ना पंचायतों का है। ये तो राज समाज सबका साझा काम है, सबको मिलके करना चाहिए, दलगत राजनीति ना की जाए, वैसा हमारा आग्रह है।
जल सत्याग्रह अगला चरण इसका क्या है?
पहला काम है 10 तारीख को सब 13 सूखाग्रस्त राज्यों के 306 जिले जो नोटिफाइड सूखाग्रस्त हैं, उन जिलों के कार्यालयों में सभी राज्य सरकारें जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम बनाएं, उसके लिए ज्ञापन देंगे। 10 मई को भारत में मेरठ में स्वतंत्रता क्रांति का पहला आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए हमने वो तारीख चुनी है। हम लोग 20 तारीख को लातूर से जल हल यात्रा शुरू करके बुंदेलखंड तक करेंगे।
भारत में पानी के संकट से निपटने के लिए जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम बनाने के लिए काम कर रहे राजेंद्र सिंह से बात कर रहे थे वात्सल्य राय।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। रुख बिहार का करते हैं। बिहार की राजनीति में विज्ञापन के बहाने विपक्ष सरकार पर निशाना साधने में जुटा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विभाग की ओर से जारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नदारद है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उधर बिहार सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए उसके नेता बाल की खाल निकाल रहे हैं। पूरे मामले पर पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
सरकारों की आलोचना आमतौर पर उसके फैसलों, उसकी कथित नाकामियों जैसी बातों के लिए होती है, लेकिन बिहार में विज्ञापन के बहाने सरकार विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल सरकारी उपक्रम बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बीते 2 दिनों में लगातार अखबारों में जो विज्ञापन दिए हैं उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं और केवल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर दिखाई दे रही है। यह कॉरपोरेशन तेजस्वी यादव के मंत्रालय यानी कि पथ निर्माण मंत्रालय के मातहत काम करता है। इन विज्ञापनों में सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री के सपनों का तो जिक्र है, लेकिन तस्वीर सिर्फ उप मुख्यमंत्री की है। इन विज्ञापनों के बहाने विपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि क्या सरकार की विज्ञापन नीति बदल गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर यादव के मुताबिक इनसे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।
बिहार सरकार की जो विज्ञापन नीति थी उसके अनुसार हर सरकारी विज्ञापन जिसमें उद्घाटन वगैरह होना है, शिलान्यास होना है, मुख्यमंत्री का फोटो हुआ करता था। विपक्ष जानना चाहता है, इधर देख रहा है कि 2-3 विज्ञापन ऐसे निकले हैं जिसमें मुख्यमंत्री का फोटो नहीं, केवल उप मुख्यमंत्री का फोटो है। हम मुख्यमंत्री से केवल जानना चाहते हैं कोई विज्ञापन नीति में परिवर्तन हुआ है क्या, क्योंकि कई कार्यक्रमों में जहां मुख्यमंत्री नहीं भी जाते हैं दूसरे मंत्री उद्घाटन करते हैं, उन विज्ञापनों में भी केवल मुख्यमंत्री का ही फोटो होता है। कई राजनीतिक क्षेत्रों में इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि फोटो के लिए दोनों दलों में कहीं ना कहीं तनाव है।
राजद नेता और बिहार सरकार में मंत्री आलोक कुमार मेहता हालांकि विपक्ष की आलोचना को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि राजद जदयू गठबंधन काफी मजबूत है और मुद्दा विहीन विपक्ष बाल की खाल निकाल रहा है।
मैं नहीं समझता कि इसमें किसी स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। हमेशा कई ऐसे मैगजीन हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री सबका फोटो रहता है। ये हमारे महागठबंधन के अंदर का मामला है। आंतरिक संबंध काफी मजबूत है, दर्द हो रहा है भाई। ये सब अंदर की बात है, आपस में हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है, इस सबसे तो फर्क नहीं पड़ रहा। ये बाल की खाल खींचने में लगे हुए हैं।
आलोक मेहता जैसे ही राय बिहार सरकार के एक दूसरे मंत्री श्रवण कुमार भी रखते हैं। हालांकि जदयू कोटे से मंत्री बने श्रवण का यह भी मानना है कि ऐसे विज्ञापन जारी करने में विभागीय अधिकारियों से कभी कभी चूक हो जाती है।
सरकार की प्राथमिकता में विज्ञापन नहीं है, सरकार की प्राथमिकता में काम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनको ये बात बच नहीं रही है, इसलिए ये सवाल छोटे मोटे सवाल उठाते रहते हैं। और भाई विभागीय अधिकारी लोग देते होंगे विज्ञापन ना, कोई मिनिस्टर थोड़ी विज्ञापन दे रहा है, तो विभाग के अधिकारी लोग देते हैं, कुछ चूक हो जाती होगी कभी कभी।
विज्ञापन से इतर हाल के दिनों में दिल्ली स्थित बिहार सरकार के कार्यालय द्वारा जारी की गई तस्वीर भी चर्चा में रही थी। इन तस्वीरों में से एक में लालू यादव के चेहरे को काटकर मीडिया को तस्वीर जारी की गई थी। इन मामलों पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी गठबंधन सरकार के अंदर ऐसी खींचतान कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री गठबंधन के बड़े दल से ना हो। मनीष शांडिल, BBC, पटना।
बिहार के सरकारी विज्ञापनों पर राजनीति। बिहार में शराबबंदी के बाद से ही नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में शराब पीने वालों की तादाद काफी बढ़ गई है। सीमा पर शराब और चिकन की दुकानें एक के बाद एक खुलने लगी हैं और बिहार से लोग शराब पीने वहां पहुंच रहे हैं। कई बार नेपाल सीमा पर शराब पीकर बिहार में प्रवेश करने वालों की जांच होती है और पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना भी भरना होता है। लोग शराब पीकर पान मसाला, इलायची जैसी चीजें खाकर सीमा पार कर रहे हैं। शराब के दुकानदार मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी से कारोबार में नेपाल में इजाफा हुआ है। भारत और नेपाल सीमा पर भिट्टा मोड़ से ब्रज कुमार यादव की रिपोर्ट।
भारत नेपाल सीमा पर मौजूद होटल बिहार के ग्राहकों से भरे पड़े हैं। दिन में 1 बजे से ही यहाँ ग्राहक जुटने लगते हैं, ऐसा होटल मालिक फुलगेन चौधरी बताते हैं।
दुकान बढ़ा है, यहाँ पर ग्राहक भी बढ़ा है ना, लोग तो बहुत सर बढ़े हैं, पहले के अनुपात में डोड़ा हुआ है।
1 महीने पहले यहाँ सिर्फ 4 दुकानें थी, लेकिन अभी यहाँ 10 दुकानें हो गई है। बिहार में शराबबंदी के कारण लोग सीमा पर शराब पीने के लिए नियमित आने लगे हैं। अपना नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर एक व्यक्ति ने बताया कि वे मुजफ्फरपुर जिले के रून्नी सैदपुर से सिर्फ शराब पीने के लिए नेपाल आए हैं।
जो नेपाल की बॉर्डर जो सूखा थी, वो आज बिहार में शराब बंद होने के वजह से उसमें रौनक आ गई है। बाजार में पैसा है, लोग आ रहे हैं बिहारी और पैसा दे के जा रहे हैं, 1 का 3 दे के जा रहे हैं।
सीतामढ़ी जिले के सुरसंड इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने भी सिर्फ शराब पीने के लिए सीमा पार करने की बात मानी।
सर, इसमें हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको बंद किया है, तो मेरे को तो सही चीज लेने के लिए तो आना ही पड़ेगा कहीं जहां उपलब्ध हो। मेरे लिए पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं पॉसिबल है, वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम बॉर्डर इलाके के लोग हैं, इसलिए हम आ सकते।
सीमा पर तैनात बिहार पुलिस भिट्ठा मोड़ के थाना अध्यक्ष मिहिर कुमार कहते हैं कि खुला बॉर्डर होने के कारण कुछ लोग नेपाल में शराब पीने जाते हैं, लेकिन शराब पीकर बिहार आने वालों को पकड़ लिया जाता है।
बॉर्डर पर 3-4 एजेंसी मिलकर छापामारी रेड कर रहा है, 10-12 भिट्ठा मोड़ से पकड़ा के जेल गया है। बिक्री वैसा कुछ नहीं है, हम लोग को नहीं लगता है कि बिक्री बहुत ज्यादा उसका बढ़ गया है। कहीं से निकलेंगे वो तो मतलब पुलिस या मतलब SSB इससे बच नहीं पाएंगे।
ऐसा नहीं है कि सीमा पर शराब पीने वाले सिर्फ आम लोग ही हैं, बल्कि इनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं।
SSB के जवान सब कभी काल ड्रेस में भी आ जाते हैं, कभी काल जनरल ड्रेस में या लोकल ड्रेस कहिए उसमें भी आते हैं, और इधर से शराब भी पीते हैं और शराब लेकर के भी जाते हैं। आज ही इंडिया के ना SSB कमांडर का गाड़ी आया था यहाँ पर और 1 कार्टून बियर लेकर के गया है।
सीमा पर आकर शराब पीने वाले हर उम्र के लोग हैं, इनमें से कुछ ने बिहार में शराबबंदी की वजह से सीमा पर शराब के दामों में बढ़ोतरी की शिकायत की। नेपाल सीमा पर भी शराब की दुकानें खोलने के लिए अधिकारियों ने लाइसेंस बंद कर रखा है। मोहतारी के जिला अधिकारी वीरेंद्र यादव का मानना है कि सीमा पर शराब की दुकानें बढ़ने से आपराधिक घटनाएं बढ़ सकती है। मगर ये भी सच है कि नेपाली होटलों में बिहार के ग्राहकों की आमदरफ्त से भारतीय मुद्रा भी उन्हें आराम से मिल जाती है। ब्रिज कुमार यादव, नेपाल भारत बॉर्डर, भिट्ठामोर।
बिहार में शराबबंदी के चलते नेपाल की सीमा पर शराब की दुकानों की संख्या बढ़ गई है। रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किन्नर से महिला बनने की सर्जरी करवा चुके एक व्यक्ति के बलात्कार से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ऑपरेशन के बाद भी लिंग परिवर्तन में समय लगता है और ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। अदालत ने कथित बलात्कार के अभियुक्त युवक की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
राजनांदगांव जिले में एक किन्नर यानी थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्ति ने 2013 में लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी करवाई थी। उसने पिछले साल 30 नवंबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी के मोहल्ले के एक युवक शिवम देवांगन ने विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब वह शादी से मुकर गया है। इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए 19 साल के शिवम देवांगन को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में जमानत पर सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दर्ज दुष्कर्म के मामले में एक पुरुष और एक महिला का होना आवश्यक है। अदालत का कहना था कि लिंग परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया बेहद जटिल, पीड़ादायक और लंबी होती है और केवल ऑपरेशन करा लेने भर से लिंग परिवर्तन नहीं हो जाता। इसके बाद अदालत ने आरोपी युवक को जमानत दे दी। युवक के वकील एचएस अहलुवालिया कहते हैं,
हमारा प्ली ये था कि मेडिकल डॉक्टर की रिपोर्ट थी केस डायरी, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इसका सर्जिकल ऑपरेशन हुआ जरूर है, मगर ये एक ऑपरेशन से नहीं होता है, इसमें बार बार ऑपरेशन छोटे मोटे और होते रहते हैं, तो लगातार इसमें मतलब 6 से 7 साल भी लग सकता है पूरा डेवलप करने में, एक कोई फीमेल हो या मेल होगा।
लेकिन थर्ड जेंडर या किन्नर समुदाय से जुड़ी रही विद्या राजपूत जैसों के लिए यह फैसला दुखी करने वाला है। विद्या ने हाल ही में लिंग परिवर्तन के लिए अपना ऑपरेशन करवाया है और उनका दावा है कि वे अब पूरी तरह से लड़की हैं।
हम लोग बचपन से एक ही सपना देखते हैं कि हम लोग एक लड़की बने, क्योंकि खुद को मैं कभी पुरुष ही नहीं समझे, अपने आप को जब से होश संभाली एक स्त्री के रूप में ही देखे। कब तक लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी जीऊँ, मैं वैसी ज़िंदगी क्यों नहीं चाहती जैसा मैं चाहती हूँ, और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ज़िंदगी जीने लगी।
थर्ड जेंडर से जुड़े कुछ लोगों के मन में इस फैसले के बाद भी लड़की बनने की इच्छा में कोई कमी नहीं आई है। महासमुंद की रबीना बढ़िया का सपना भी लड़की बनना है, लेकिन संकट पैसे का है।
डिप्रेशन को दूर करने का एक ही तरीका है कि मैं अपने मन के हिसाब से अपने बॉडी को बना लूं। तो मेरे बहुत सपनों की बात थी कि मैं अपने मन के हिसाब से अपने बॉडी को बना लूं, चूँकि इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। घर वाले जैसे हमको निकाल दिए तो इस ऑपरेशन के पैसे की बात तो दूर, पेट भरने के लिए पैसे के लिए हमको जद्दोजहद करनी पड़ी थी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लिंग परिवर्तन, थर्ड जेंडर और दुष्कर्म से जुड़े मामले पर एक नई बहस की शुरुआत हो सकती है, और जाहिर है इस बहस में सबके पास अपने हिस्से का अलग अलग तर्क होगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और इस रिपोर्ट के बाद अब अखबार के पन्ने पर अट लेते हैं। दिलनवाज, सारे अखबार आपने फैला डाले, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी, कल जब हमने प्रेस रिव्यू किया था तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की बात की थी जिन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन कल ही अरविंद केजरीवाल ने भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी क्यों गिरफ्तार नहीं, और वो आज अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए हैं। हिंदुस्तान लिखता है, अगस्ता की जंग में आप भी कूदी, और ये खबर बाकी अखबारों के पहले पन्ने पर भी है। उत्तराखंड की में जो सियासी असमंजस लगातार बढ़ रहा है वो खबर भी आज के पहले पन्ने पर है अखबारों में। कल वहाँ बागी विधायकों पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा।
सुरक्षित हो गया है और फैसला जो है वो सोमवार को कल अदालत।
जी बिल्कुल, और 10 मई को जो है फ्लोर टेस्ट भी होना है। जी, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का जिक्र करना चाहूँगा, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्हें राजस्थान में टेक्स्ट बुक्स यानी जो किताबें हैं स्कूल की उनसे बाहर कर दिया गया है। तो ये पहले प्रधानमंत्री थे। इसके साथ ही एक और खबर द हिंदू की है जिसके मुताबिक नेपाल ने भारत पर अपने देश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। यहाँ ये याद हम दिला दें अपने श्रोताओं को कि नेपाल ने अपने भारत से राजदूत को भी वापस बुला लिया है। जिक्र करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर राजन के बयान का भी, जिन्होंने
रघुराम राजन जी
जिन्होंने कहा है कि छात्र जो हैं ठगने वाले संस्थानों से दूर रहें और उनके चक्कर में आकर लोन लेकर पढ़ाई ना करें। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक BS बस्सी जो दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। और एक और खबर दिल्ली से जुड़ी हुई, कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर है दिल्ली भारतीय शहरों में अगर कमाई की बात की जाए। और बात कमाई की हो रही है तो ये भी बता दें अपने श्रोताओं को, संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आजकल डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो CA या इंजीनियर से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं सैलरी के मामले में।
आप सैलरी का जिक्र कर रहे हैं और कमाई की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में लोगों की कमाई ज़्यादा हो गई और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कितने पैसे हैं।
जी बिल्कुल।
जी, और एक कार्टून मैं पढ़ना चाहूँगा और ये कार्टून जनसत्ता में ही छपा है और ये अगस्ता हेलीकॉप्टर का जिक्र है। इसमें मोदी जनता से राय मांग रहे हैं और ये चुनाव प्रचार के दौरान की बात है। अगस्ता घोटाले के दोषियों को सजा दूँ कि ना दूँ, तो जनता कह रही है हाँ दे दो, तो मोदी पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट दूँ, 20% कि 40%। तो ये इरफान का कार्टून है और जनसत्ता में छपा है। एक और खबर जनसत्ता में ही है कि मेरा नाम सादिक खान है और मैं लंदन का मेयर हूँ।
जी
और
बिल्कुल,
ये उन्हीं का जिक्र हो रहा है कि लंदन में पहले मुसलमान मेयर जो हैं उनका नाम सादिक खान है।
जी बिल्कुल, यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि सादिक खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें वो एक मंदिर में मूर्ति पर पानी डालते हुए दिख रहे हैं और लिखा गया है कि सादिक खान सभी धर्मों का सम्मान करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। इस्तांबुल में आयोजित किए जा रहे दूसरे ओलंपिक क्वालिफायर कुश्ती टूर्नामेंट में कल भारत की दो महिला पहलवानों ने रियो का टिकट हासिल किया। भारत की विनेश फोगाट ने 48 किलोग्राम और साक्षी मलिक ने 58 किलो भार वर्ग में ये उपलब्धि हासिल की। दरअसल विदेश ने तुर्की की इविन देमिरहान को हराते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की की, तो दूसरी तरफ साक्षी ने सेमीफाइनल में चीन की लान झांग को मात दी। रियो का टिकट हासिल करने के लिए फाइनल में जगह बनाना जरूरी था। उधर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल वर्ग के फाइनल में कल शीर्ष वरीयता के साथ खेल रही भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस, पांचवी वरीयता हासिल फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया और क्रिस्टीना मलानेदोविच से 6-4, 6-4 से हार गई। दूसरी तरफ पुरुष युगल वर्ग में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं आईपीएल में कल दो मुकाबले खेले गए जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने ही घर में खेलते हुए कप्तान विराट कोहली के नाबाद 108 रनों के शतकीय पर हार से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स को 3 गेंद शेष रहते 7 विकेट से मात दी, जबकि बेंगलोर के सामने जीत के लिए 192 रनों जैसा विशाल लक्ष्य था। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पुणे ने अजिंक्य रहाणे के 74 और सौरभ तिवारी के 52 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 191 रन बनाए। कल खेले गए दूसरे मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डे डेविल्स को 9 रन से मात दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पंजाब ने मार्कस स्टोइनिस के 52 और रिद्धिमान साहा के भी 52 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 181 रन बनाए और उसके बाद दिल्ली को 5 विकेट पर 172 रन बनाने दिए।
कार्यक्रम में अब उन खबरों की चर्चा जिन पर आज हमारी रहेगी नजर। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के अनशन का आज 10वां दिन है। हड़ताली छात्र आज विश्वविद्यालय परिसर में मार्च निकालेंगे और इससे पहले JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। केरल में कानून की छात्रा से कथित बलात्कार के मामले में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने कहा है कि मामले की जाँच CBI को नहीं सौंपी जाएगी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी ने अपने नेता को दी गई मौत की सजा के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। पेरिस में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए आज कार फ्री डे मनाया जा रहा है। शहरवासियों और पर्यटक आज शहर के सबसे प्रसिद्ध इलाके चैप्स इलीज में सड़कों पर घूमेंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम के समापन की ओर हम पहुंचे, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सूखे से जूझ रहे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। स्पेन की सरकार के मुताबिक सीरिया में अगवा किए गए 3 स्पेनिश पत्रकारों को रिहा कर दिया गया है। कनाडा के अधिकारियों के मुताबिक अल्बर्टा प्रांत में लगी भीषण जंगल की आग और तेजी से फैल रही है और पड़ोसी प्रांत सास्काचेवान तक पहुंच सकती है। बोस्निया की प्रसिद्ध फरहात पाशा मस्जिद को पुनर्निर्माण के बाद दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। पोलैंड में 7 माह पहले सत्ता संभालने वाली लॉ एंड जस्टिस पार्टी की नीतियों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। 1 घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।